खंड एक, लोक से रंग तक, अंतस और परिवेश। हबीब तनवी के रंग व्यक्तित्व के दो पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने उनके समूचे रंगकर्म की दिशा विशेष की ओर उन्मुख कर दिया। वे दिल से शायर हैं और दिमाग से मानवतावादी। दिल और दिमाग का यह रिश्ता उनके समूचे रंग चिंतन में पूरी शक्ति के साथ उभरता है। उनके व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है कभी भी हार न मानने की जिद। उनकी यह जिद उनके रंग बिरंगे अंदाज में अनेक रूपों में नजर आती है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी यह जिद लचीली होते हुए भी उनके मकसद से समझौता करने से इनकार करती रही है। जिंदगी की अनेक मोड़ों पर उनकी इस जिद ने उन्हें संकट में भी डाला है और उनके संघर्ष को नए तेवर भी दिए। लेकिन सच यह है कि हबीब तनवीर भारतीय रंगमंच के जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसमें उस जिद की जमीन सबसे ज़्यादा पुख्ता और कारगर साबित हुई है। इस जिद की बदौलत वे अपने दिल और दिमाग को जुझारू बनाए रखने में समर्थ हो सके। ऐसा नहीं कि उनके व्यक्तित्व की इन तीन प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त उनके रंग चिंतन में अन्य तत्वों ने योगदान नहीं दिया, लेकिन शायद ये सारी विशेषताएं समय और परिस्थितियों के अनुसार उनकी परिपक्व होती जाती सोच और विश्वास को संकट और दुविधापूर्ण अवसरों पर निर्णय लेने के लिए एक आंतरिक शक्ति के रूप में कार्य करती रही हैं। जीवन के नित्य रंग बदलते अनुभवों और विडम्बनापूर्ण स्थितियों में हबीब तनवीर को जिन तत्वों ने जीवंत और संघर्षशील बनाए रखा उसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे संभवतः ये तीन प्रमुख तत्व हैं। यह तीनों तत्व हबीब तनवीर के अंतर्मन से उपजे हैं। परिवेश ने उनकी धार नुकीली और पैनी की है, उन्हें सहारा भी दिया है और तात्कालिक जड़ होती जा रही कलात्मक मनोवृत्ति के खिलाफ अकेले युद्धरत रहने के लिए प्रेरित भी किया है। 1 सितंबर सन 1923 में रायपुर मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ में जन्मे हबीब अहमद खान बाद में हबीब तनवीर अपने पिता हाफिज मोहम्मद हयात खान के दूसरे बेटे हैं। उनके पिता पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है से आकर रायपुर में बस गए थे। माँ रायपुर की थी, वहीं जन्मी पली और बड़ी हुई। नाना मामा सब रायपुर की जमीन से घरे तक जुड़े हुए हैं। हबीब तनवीर की जिंदगी का पहला विरोधाभास यहीं शुरू हुआ। वालिद एक मजहबी शख्स, नमाज और कुरान की जिंदगी की सबसे बढ़िया अहमियत देने वाले, बुतपरस्ती के खिलाफ यानी दूसरे अल्फाज में नाटक संगीत और नृत्य आदि को मजहब के खिलाफ मानने वाले। लेकिन दूसरी तरफ ननिहाल के लोग, एक मामा शास्त्रीय संगीत के अच्छे गायक थे और संगीत में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें मजहबी तौर पर इस्लाम और इल्म के बीच किसी किस्म की मुखालफत नज़र नहीं आती थी। उनके जहन में संगीत इल्म था और मजहब इंसान की अकीदत, इसीलिए वो मजहबी होते हुए संगीत को रूहानी तस्कीन का सबब मानते थे। हबीब तनवीर के दूसरे मामू एक अच्छे शायर थे और उमदा शेर लिखते थे। अदब में दिलचस्पी की बदौलत अदीबों का संग साथ रहता था। अच्छे और बड़े शायरों के दीवान पढ़ना और उन पर चर्चा करना उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा था। अंदाज लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि भले ही माँ ने अपने खाविंद की मर्जी के खिलाफ कुछ कहा नहीं हो, लेकिन मन ही मन वो इल्म व अदब की खासियत हमें देती रही होंगी। यह सिर्फ अनुमान नहीं है, इसका आधार भी है। हबीब तनवीर के बड़े भाई को नाटकों में अभिनय करने का शौक था। वे रायपुर की कालीबाड़ी के साथ जुड़े हुए थे और प्रतिवर्ष वह मंचित होने वाले नाटकों में भाग लिया करते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि वे विशेष रूप से स्त्री भूमिका अदा करते थे। पिता के विरोध के बावजूद उनका नाटकों में भाग लेना माँ के मौन समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता था। उनके बड़े भाई के रंगमंची गतिविधियों को पिता ने कतई कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन जब हबीब अहमद खान अपने स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए अभिनय करने लगे तो पिता ने कोई एतराज़ जाहिर नहीं किया। उस वक्त की यादों का जिक्र हबीब तनवीर ने अपने लेख ए लाइफ इन थिएटर में इन शब्दों में किया है, सिंगल एंड नोटेड कॉमा। साधारणतः इसमें मेरे पिता की सहमति नहीं थी, लेकिन सबके स्कूल की गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वे मेरे भाई के रंगकर्म संबंधी सक्रियता से रजामंद नहीं थे। वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी बहाने अपनी नापसंदगी जाहिर कर देते थे। मैं भी चोरी छिपे गोपनीय तरीके से नाटक देखने जाया करता था। मेरे पिता मेरे बड़े भाई को लेकर बहुत दुखी थे। अपने बचपन से ही मैं नमाज पढ़ते हुए घर या स्कूल में किसी अन्य व्यक्ति की तरह धार्मिक आस्था से परिपूर्ण होकर ही बड़ा हुआ। मदरसे में मैं अरबी, फारसी और कुरान पढ़ रहा था। मैंने जब ईद के दिनों और शुक्रवार को छोड़कर रोज़ाना नमाज पढ़ने का सिलसिला बंद कर दिया तो मेरे पिता मुझसे बार बार कहते थे कि तुम्हें मजहब का ख्याल रखना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यूनाइटेड कामा बंद। परिवार के इस कट्टर परिवेश के बावजूद बालक हबीब कांतस जिस तरह अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश कर रहा था उसका विश्लेषण भी कम दिलचस्प नहीं है। बालक हबीब अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ चोरी छिपे गोपनीय तरीके से नाटक देखने जाया करते थे। उस समय उनकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा नहीं थी। इस छोटी सी उम्र में नाटक देखने का शौक इतना जबरदस्त था कि वे एक बार बड़ी जोखिम मोल ले रहे थे। अगर ये चोरी छिपे नाटक देखने का राज वालिद के सामने खुल जाता तो उन्हें सज़ा मिल सकती थी। डांट फटकार तो लाजमी तौर पर होती, लेकिन इस खतरे को मोल कर भी वे नाटक देखने का मोह नहीं छोड़ पाए। सिर्फ 5-6 साल की उम्र में नाटकों के प्रति बालक हबीब की यह दिलचस्पी काबिले गौर है। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे अपने माँ बाप के इशारों पर चलने वाले होते और उनकी मर्जी न होने पर अपनी दिली ख्वाहिशों का गला घोट देने पर मजबूर हो जाते, लेकिन बालक हबीब की ये जिदें उनके मन में पल रहे जज्बात की शिद्दत को नुमाया करने में पूरी तरह कामयाब हुई। आखिर इतनी जोखिम उठाकर उन नाटकों को देखने पर उन्हें किस तरह की मसर्रत हासिल होती थी, एक छोटा सा वाकया है जिसे हबीब तनवीर ने अपनी आत्मकथा लाइफ इन अ थिएटर में तो बखूबी कहा ही है, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पर भेंट वार्ता में बातचीत के दौरान इसका कई बार जिक्र किया है। ख़ास तौर पर एक लंबे इंटरव्यू में उन्होंने इस घटना का मज़ा लेकर तस्करा किया। सिंगल नोटेड का नाटक का नाम मोहब्बत के फूल, लेखक रफीक अब्दुल्ला, विशुद्ध पारसी थिएटर के रंग पर, कथानक पूरी तरह रोमांटिक। नाटक का नायक अपने महबूबा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसकी महबूबा भी दिलुजान से उस पर न्यौछावर है, लेकिन इनकी मोहब्बत समाज और सरमायादारों की मर्जी के खिलाफ है, इसलिए नायक को जंजीरों से बांध कर गुफा में कैद कर दिया जाता है। नायिका अपने आशिक की जुदाई में उसे गली गली जंगल जंगल ढूंढती फिरती, रोती हुई कलपती हुई, आखिर में वो अपने आशिक से मिलने में कामयाब हो जाती है। इस मोहब्बत के फूल नाटक में नायिका की भूमिका बालक हबीब के बड़े भाई अदा करते थे। नाटक की नायिका के दर्द से मुतासिर बालक हबीब इस सीन में इतने डूब जाते थे कि नायिका के साथ वे भी जार जार रोते थे। ये उधर का मामला बालक हबीब का यह रोना क्या, कैसा था, क्यों था? पहली बात तो यह है कि रोना सिर्फ एक बार का या पहली बार का रोना नहीं था। हर बार उस नाटक को देखकर ये जानते समझते हुए कि इस नायिका की भूमिका मेरे बड़े भाई हैं और ये जुदाई का दर्द हकीकत नहीं सिर्फ एक्टिंग है, हबीब इस किरदार के दर्द के साथ जज्बाती तौर पर यकसा हो जाते थे और बेशाख्ता उनकी आंखों से आंसू फूट पड़ते थे। बालक हबीब के अंतस पर गौर करें तो पाएंगे कि अभिनेता और दर्शक के बीच की इस सह अनुभूति का कारण वह बोध है जो इंसान को कुदरत की देन है, इस पर किसी का वश नहीं चलता। अपने दर्द से दुखी होकर रोना एक बात है, दूसरे के दर्द को शिद्दत से महसूस करना और जज्बाती होकर रोना दूसरी बात, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी और के दर्द को इतनी तीव्रता से महसूस करना, शरीक हयात होना और अपने जज्बात पर काबू न रख पाना, इन सबसे जुदा एक खास बात है। बालक हबीब की यह सह अनुभूति उनके आंतरिक जगत को अत्यंत व्यापक बनाती है, उनमें अपनी और पराई की दीवार नहीं है, यथार्थ और कल्पना की टकराहट नहीं है, यहाँ वस्तु जगत और भाव जगत दोनों पूरी तरह एकाकार हो जाते हैं। यही स्थिति कलाकार के अंतर्मन को सामान्य मनुष्य के अंतर्मन से अलग करती है। सहानुभूति की तीव्रता ही उसे अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती है या कहें बाध्य करती है, भले ही यह अभिव्यक्ति कला के किसी भी माध्यम से क्यों न हो। नाटकों के अलावा बालक हबीब की दूसरी बड़ी दिलचस्पी फिल्मों में थी। नाटक तो सिर्फ साल में सिर्फ एक बार दुर्गा पूजा के मौके पर ही होते थे, जिन दिनों नाटक नहीं होते थे उन दिनों बालक हबीब अपनी हवस को फिल्म देखकर पूरी करते। मुख्य फिल्मों के ज़माने से ही उनकी दिलचस्पी फिल्मों में हो गई थी। लाइफ इन अ थिएटर में अपने बचपन की याद करते हुए लिखा है सिंगल इनोटेड का, मैं अपने बचपन से ज़बरदस्त फिल्म देखने वाला रहा हूँ। रायपुर में मैंने मुख्य फिल्में देखी, टिनटिन और उस तरह के सीरीज की तमाम फिल्में, दीगर मुख्य फिल्में तंबू में भी, चलते फिरते सिनेमा के जरिए भी और बाबूलाल टाकिस में भी, जो उस वक्त रायपुर में एकमात्र सिनेमाघर था। अब तो वहाँ बहुत सारे सिनेमाघर में, लेकिन बाबूलाल का अपना एक चरित्र था। उन्होंने चलते फिरते सिनेमा से अपनी ज़िंदगी शुरू की। हम लोग उसे बिना टिकट जाया करते थे। कोई शरारती लड़का टेंट यानी तंबू को एक तरफ कहीं से काट देता और उस शरार से हम लोग भीतर चले जाते थे। कभी कभी हम लोग रस्सों के नीचे से झुक कर भीतर सरक जाते, ठीक उसी तरह जैसे हम लोग सर्कस में घुसा करते थे। इनोटेड कामा बंद। बचपन में फिल्मों के प्रति ये दीवानगी सिर्फ शौक नहीं था, शौक से ही ज़्यादा ये दीवानगी अभिनय के प्रति उनके रुझान की तरफ इशारा करती है। शरारती लड़कों के गिरोह का फायदा उठाकर कटे हुए टम्बू के अंदर घुस जाना, बिना टिकट फिल्म देखना कम जोखिम भरा काम नहीं था। पकड़े जाने पर जो लानत मालानत होती वो तो अलग, उसका ख्याल भी उन्हें रहा होगा, लेकिन बालक हबीब ने फिर भी एक जोखिम मोल लेकर अपनी जिद पूरी की। ये जिद उनके विद्रोही स्वभाव से कहीं ज़्यादा उनके अंतर्मन के आनंद को दर्शाती है। ये जिद समझौते के खिलाफ होते हुए अपने बुजुर्गों और समाज के नियम कायदों के सामने झुककर चलने वाले बालक की तस्वीर पेश करती है। ऐसा लगता है कि रायपुर जैसे छोटे से शहर में बालक हबीब के मन में अभिनय के प्रति गहरी दिलचस्पी जगा देने में इन फिल्मों का जबरदस्त योगदान रहा होगा, लेकिन अभिनय की बुनियादी तालीम उन्हें अपने म्युनिसिपल हाई स्कूल के उन अध्यापकों से मिली जिन्होंने अभिनय की कोई तालीम नहीं ली थी। हबीब अहमद खान की उम्र उस समय मुश्किल से 11 या 12 साल की थी। शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन के एक अंश में पहली बार अभिनेता के रूप में रंगमंच पर उतरे। ह्यूबर्ट और प्रिंस आर्थर नाटक में ह्यूबर्ट की भूमिका में उनके अजीज दोस्त हमीद मदनी थे और प्रिंस आर्थर की भूमिका में हबीब। ह्यूबर्ट बेहद कड़ी तकरीर करते हुए प्रिंस आर्थर की आँख फोड़ने के लिए आता है। प्रिंस आर्थर उससे चिरौरी करते हुए कहता है, इनवर्टेड कॉमा, अगर तुम्हारी आँखों में कोई छोटा सा जर्रा या धूल का कण हो तो तुम कैसा महसूस करोगे, इनवर्टेड कॉमा बंद। एक छोटा सा वाक्य ह्यूबर्ट का दिल बदल देता है और वो आर्थर की आँखें फोड़ने का इरादा छोड़ देता है। जाहिर है कि एक छोटा सा वाक्य इस तरह बोला जाना चाहिए कि दर्शकों के दिल तक एहसास हो जाए जो ह्यूबर्ट का दिल बदलने के कारण बनता है। इस छोटी सी भूमिका में अभिनय वह प्रभाव पैदा करने की कामयाब कोशिश की। उसमें पूरा रस लेते हुए उन्होंने उसे इस तरह अदा किया कि देखने वाले वाह वाह कर उठे। इस भूमिका के लिए उन्हें स्कूल का ठाकुर प्यारे लाल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े नाटक में भाग लिया। वो नाटक वे स्कूल के किसी जलसे के दौरान तैयार किया गया था। उस वक्त वे अंग्रेजी क्लास में पढ़ते थे। स्कूल के फारसी टीचर मोहम्मद इशाक ने वो नाटक लिखा था। बाद में उनके बहनोई हुए। शीर्षक था दुरे यतीम उफ पालिश वाला। खालिस फारसी रंगमंच की तर्ज पर उनके ड्रिल मास्टर मोहियुद्दीन ने उनका निर्देशन किया। नाटक एक जूता पॉलिश करने वाले लड़के के बारे में लिखा गया था जो बहुत जहीन शख्सियत है। उसे एक अमीर आदमी से नक्षर देता है, उसे तालीम देता और आगे पढ़ने के लिए उसे विदेश भेजता है। वह लौट कर आता है और एक कामयाब जिंदगी बसर करता है। एक लंबे इंटरव्यू में उस जमाने की याद ताज़ा करते हुए हबीब तनवीर ने कहा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, उससे पहले एक लंबी तकरीर थी, एक टुकड़ा मुझे अभी तक याद है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, दुनिया मक्कार वो आंवला फरीब दुनिया, गरीबों को सताने वाली दुनिया, फलासीज को ऐसा ऐसा करने वाली दुनिया, वगैरह वगैरह, इनवर्टेड कॉमा बंद। एक हाथ माथे पर दूसरा पीठ पीछे रखकर एंट्री लेनी थी। हर लफ्ज पर एक मुद्रा थी, एक अदा थी, वैसे ही करने को कहा गया मुझसे। आज सोचकर हंसी आती कि किस तरह का डायरेक्शन था, हर स्वर पर जोर, पर मैं उस वक्त उससे बहुत प्रभावित था। बहुत अकीदत थी, बहुत श्रद्धा थी उस वक्त अपने टीचर के प्रति, इनवर्टेड कॉमा बंद। अपने अध्यापकों, गुरुओं और उस्तादों के प्रति यह श्रद्धा रंगमंच की दृष्टि से बड़ी अहमियत रखती है। रंगमंच की रीति नीति का यह पहला पाठ हबीब तनवीर ने उस तरह आत्मसात किया जो उनके रंग व्यक्तित्व के विकास का आधार बना। निर्देशक और अभिनेता का यह संबंध आदर्श है। गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा के अभाव में कोई कलाकार विकास नहीं कर सकता। यह संदर्भ हमारे आज के रंगकर्मियों के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति अपने परिवेश से क्या कुछ ग्रहण कर सकता है, उसे ग्रहण करने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना होगा, ये बातें अब हमारे आधुनिक कलाकारों के लिए बेमानी सी हो गई हैं। लेकिन हबीब तनवीर की आंतरिक शक्ति के पीछे यह तत्व बड़ी अहमियत रखता है। वे जिस माहौल में पले और बढ़े हुए, वह माहौल भी विविधताओं से भरा हुआ था। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र अब वह छत्तीसगढ़ नहीं है जो सन 30 के दशक में था। अब छत्तीसगढ़ एक नया प्रदेश बन गया और रायपुर इसकी राजधानी है। उस समय छत्तीसगढ़ में भी रायपुर सबसे बड़ा जिला था, लेकिन 5 अन्य जिले बिलासपुर, दुर्ग, राजानंदगांव, रायगढ़ और बस्तर पिछड़े हुए इलाके थे। आज इसका बहुत बड़ा हिस्सा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। देश विदेश में उस क्षेत्र का जनजीवन कैसा रहा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अशिक्षा, गरीबी और अन्याय की मार से जनजीवन त्रस्त था, लेकिन इस दुख को कम करने वाले तत्व भी काफ़ी प्रबल थे। सार्वजनिक अनुष्ठानों, तीज त्योहारों, होली, दिवाली, ईद और मुहर्रम जैसे धार्मिक उत्सव या अवसर पूरी समाज की धड़कन होते थे। धार्मिक या सामाजिक सद्भाव के लिए किसी नारे उपदेश की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ के जनजीवन का तरंग हिस्सा थे। सदियों से चले आ रही सामाजिक मान्यताओं में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों में एक अद्भुत भाईचारे का भाव बना रखा था। आए दिन सामूहिक गीतों नृत्यों के आयोजन होते थे जो उस जमीन की धड़कन से उपजे थे। रमजान के मौके पर हाथों के कड़ों पर डंडा भजा कर गाते हुए फकीर, गौरी गौरा, चंदेनी, पंडवानी और नाचा के संस्कृत संगीत नृत्यात्मक प्रस्तुतियाँ जितनी विविध थी उतनी सहज और अनौपचारिक भी थी। अपने अंचल की उस लय और ताल से बालक हबीब के भाव कलाकार मन को बेहद समृद्ध किया। ये लय और ताल बाद के वर्षों में हबीब तनवीर के रंगकर्म में एक ऐसी विस्फोटक शक्ति बनकर उभरी जिसने सभी को चमत्कित कर दिया। उस जमीन के लय और ताल ने मानवीय सरोकार की जिस अनुभूति को रंगमंच पर पेश किया वह सिर्फ उस क्षेत्र या इलाके भर की नहीं रह गई, वह अंततः बहुत व्यापक, सर्वजनीन और सार्वदेशिक हो गई।